नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हंगामे के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। संसद ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर बहस के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय निर्धारित किया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। मुंबई में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। बांग्लादेश वायुसेना के प्रशिक्षण विमान के राजधानी ढाका में इमारत से टकराने की दुर्घटना में 20 लोगों की मौत और 170 से अधिक घायल। और भारत अक्टूबर और नवंबर में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हंगामे के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी सांसदों द्वारा पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की कार्यवाही सहित कई मुद्दों पर नारेबाजी के बाद सुबह दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। दोपहर 2 बजे स्थगित होने के बाद जब सदन शाम 4 बजे फिर से शुरू हुआ तो दृश्य अलग नहीं था और अध्यक्ष को लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर शुरुआत में एक स्थगन को छोड़कर कामकाज सुचारू रहा। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि संसद का मॉनसून सत्र सार्थक होगा और सकारात्मक चर्चाओं से भरपूर होगा। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों से सत्र की सुचारू कार्यवाही में सहयोग करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सत्र देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा।
इस सत्र के दरमियान भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा।
संसद भवन में आज संसद की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा करने का निर्णय लिया गया। इस पर लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आयकर विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कुल 145 लोकसभा सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। संसद न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को आवास पर नकदी बरामद होने से संबंधित मामले की जांच करेगी। उधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रस्ताव पर राज्यसभा के 50 से ज्यादा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं।
On an earlier occasion, that if the requisite number of members who verify their signatures and the number goes above 50 or more, I would proceed and deal with the issue of a signature that has been twice there and not owned by the member in a different manner.
संसद ने लदान पत्र विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा इसे मार्च में ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य पोत परिवहन दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को नया और सरल बनाना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मंत्रालय का विजन योजना विकसित की गई थी। इसके अंतर्गत सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया गया था और 805 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है।
5 million metric ton. That was the cargo handling capacity of during the UP regime. But in the last 10 years, if you look at the figure, it went up to 855 million metric ton. That is the massive growth. Coastal shipping. In 2013-14, the coastal shipping was limited to 87 million metric ton. Now, because of the modernization and also developing the efficiency of the port, it went up to 165 million metric ton. Even in the inland waterways, it was limited to 18 million metric ton. Now it went up to 145 million metric ton.
लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्षी सदस्यों को सदन में बोलने नहीं दे रही है।
हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये नया अप्रोच है, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए।
भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने राहुल गांधी के लोकसभा में बोलने नहीं दिए जाने के आरोप को खारिज कर दिया है। संसद के बाहर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री रूड़ी ने कहा कि यह तय करना लोकसभा अध्यक्ष का विशेष अधिकार है कि कौन कब बोलेगा।
Now, I've never seen any individual who wants to speak on a legitimate forum is denied to speak. But having said that, possibly it's for the speaker to decide and it's the prerogative of the speaker to decide who speaks when and there is a whole process.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण आदेश के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र 1,500 मतदाताओं की पिछली सीमा को संशोधित कर 1,200 मतदाता कर दिया गया है। सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए एक अनुमोदन पत्र के दावों का खंडन किया है। इसमें LPG एजेंसी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने का दावा किया गया था। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया कि ये अनुमोदन पत्र फर्जी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 30 जुलाई को शाम 4:40 पर श्रीहरिकोटा के शार अंतरिक्ष केंद्र से निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह इसरो ने अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेता राणा दग्गुबाती, विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज और कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन अभिनेताओं और प्रभावशाली लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का आरोप है। हाल ही में एजेंसी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बिल्डर खरीदारों के साथ 1,100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में रामप्रस्थ समूह के दो प्रमोटरों को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि प्रमोटरों के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित 3 ठिकानों और आवासीय तथा व्यवसायिक परिसरों की तलाशी ली गई। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता VS अच्युतानंदन का आज लंबी बीमारी के बाद तिरुवनंतपुरम के अस्पताल में निधन हो गया। वे 101 वर्ष के थे। वे 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र सरकार ने देश की बढ़ती क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के साथ एक समझौता किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य राज्य भर के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बांग्लादेश वायुसेना के एक प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट सहित 20 लोग मारे गए हैं और 170 से अधिक घायल हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
इसके इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के नवीनतम अपडेट के अनुसार सोमवार दोपहर ढाका के उत्तरा इलाके में बांग्लादेश वायुसेना के एक जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और 171 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश का F-7 विमान चीन के चेंगदू F-7 का आधुनिक संस्करण है जो सोवियत MiG-21 पर आधारित है। 2013 में चीन द्वारा बांग्लादेश को F-7BGI की 16 इकाइयों के अंतिम आपूर्ति के बाद इसका उत्पादन बंद कर दिया गया था। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश को हर संभव सहायता और सहयोग देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने कल तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले दो तीन दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
भारतीय मौसम विभाग मुंबई की निदेशक शुभांगी भूते के अनुसार शहर में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण भारी बारिश हो रही है। आज सुबह 8:30 बजे तक सांताक्रूज में 115 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि नवी मुंबई, ठाणे और रायगढ़ क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। एयरलाइंस ने यात्रियों को थोड़ा पहले निकलने और अपनी फ्लाइट की स्थिति जांचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक मुंबई में गरज और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सतर्क और आवश्यक सावधानियां बरते। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज वर्षा से जनजीवन फिर अस्त व्यस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिलों के नॉर्बल हॉल स्पीति सहित अधिकांश भागों में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के चलते 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 5 घर व 1 पुल और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल में भारी वर्षा, ओलावृष्टि व फ्लैश फ्लड की घटनाओं से किसानों की लगभग 90% फसल नष्ट हो गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में आगामी 24 घंटों के भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक पर मापे गए भारत के बुनियादी ढांचे के उत्पादन में जून 2025 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.7% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस्पात, सीमेंट और रिफाइनरी के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं हर्ष रंजन।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 442 अंक बढ़ा और 82,200 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 122 अंक की बढ़त के साथ 25,090 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे कमजोर हुआ। $1 की कीमत ₹86.30 रही और ब्रेंट क्रूड की कीमत आज $68.89 प्रति बैरल रही।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष मई में 20,06,000 सदस्य जुड़े हैं। ये अप्रैल 2018 में पेरोल डाटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि ये उपलब्धि देश के औपचारिक रोजगार परिदृश्य की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार सुगमता और आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत इस साल 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। प्रतियोगिता के लिए मेजबान शहर की घोषणा जल्द की जाएगी। विश्व में शतरंज की सर्वोच्च संस्था फिडे ने आज ये घोषणा की। 2025 विश्व कप के शीर्ष 3 खिलाड़ी 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए दावेदार का निर्धारण करता है। फिडे विश्व कप 2025 में 206 खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। फिडे महिला विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में आज दिव्या देशमुख ने हरिका द्रोणावली को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब सेमीफाइनल में भारत की दिव्या देशमुख का मुकाबला चीन की तेन जोंगई से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की कुनेरू हम्पी चीन की लेक टिंगजे के साथ मुकाबला करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हंगामे के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। संसद ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर बहस के लिए लोकसभा में 16 घंटे का समय निर्धारित किया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। मुंबई में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। बांग्लादेश वायुसेना के प्रशिक्षण विमान के राजधानी ढाका में इमारत से टकराने की दुर्घटना में 20 लोगों की मौत और 171 से अधिक घायल। भारत अक्टूबर नवंबर में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार। 8